मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज वेडनेसडे है और आज मैं आप सबसे बात करूंगा कितना पढ़ें इस टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले आप सबको मुझे एक सूचना देनी है और यह जो सूचना है समाचार से ही जुड़ी हुई सूचना है, लेकिन चूंकि अभी मैं इस पर आगे बात नहीं करूंगा इसलिए मैंने इसे सूचना कहा है। यदि आपने रेडियो न्यूज सुना हो तो हमारे विदेश मंत्री जी ने उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, दो तरह के शब्दों का। एक उन्होंने प्रयोग किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कंपाला सिद्धांत, यानी कि भारत के अफ्रीकी देशों के साथ जो संबंध विकसित होंगे आगे वे कंपाला सिद्धांत के आधार पर होंगे। कंपाला सिद्धांत नया शब्द आ गया, हालांकि है ये 2018 का, लेकिन सामान्यतः आपने देखा होगा कि इस पर बात नहीं होती और हो सकता है कि आपने भी इसे पहली बार सुना हो, कंपाला सिद्धांत। तो बेहतर होगा कि आप सब थोड़ा सा कंपाला सिद्धांत को उलट कर देख लें, बहुत सिंपल सा है, थोड़ी सी जानकारी ले लें और यदि अवसर मिला तो डेफिनेटली इसकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगा। लेकिन बाय द वे यदि ऐसा नहीं हो सका तो आप नोट कर लें, आप अपनी तरफ से थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, बहुत ही सामान्य सी बात है। और चूंकि अफ्रीकी देशों के साथ अब भारत अपने संबंध बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है तो आपको जानना ही चाहिए, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह हम जानते हैं उसी तरह से कंपाला सिद्धांत भी जानना चाहिए। दूसरे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था कि भारत ये चाहता है कि जो दक्षिण गोलार्ध के देशों की प्रगति है वो तेजी के साथ हो। उन्होंने यूज किया दक्षिणी गोलार्ध के देशों की प्रगति। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि जो दक्षिण गोलार्ध के देशों की प्रगति अगर हमारे विदेश मंत्री जी कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? दक्षिण गोलार्ध के देश कौन है, क्या है, कैसे ये बात कही गई? बस ये मैं आपको केवल विचार करने के लिए बता रहा हूं। दोस्तों आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर बात करें, कितना पढ़ें। पिछले बुधवार को मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्या क्या पढ़ें, जिसका संबंध सिलेबस से था और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सिलेबस के बारे में मैंने जो बातें आप सब के सामने रखी थी उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे पढ़ने को मिली। इसका मतलब है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दिशा निर्देश मिल सका कि आपको अपने सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। और दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आपका सिलेबस गड़बड़ होगा तो मान करके चलिए कि तैयारी कभी सही हो ही नहीं सकती, ये कोई बताने की बात नहीं है। अब आपके लिए है ये चैलेंज कि आप सिलेबस को कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने यहां जरा भी ढिलाई दे दी या शॉर्टकट अपनाया कि अरे यार मैं समझ लूंगा, हो सकता है कि आप समझ लें लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि पता नहीं आपके मेच्योरिटी का लेवल कितना है कि आप सच में समझ पाएंगे कि सिलेबस कितना है। उसका कारण यह है कि इसको लेकर के सीधे सीधे कोई किताब उस तरह से लिखी नहीं गई है कि मैं कह दूं कि आप इस विषय के लिए यह किताब पढ़ लीजिए। कुछ कहीं मिलता है, कुछ कहीं मिलता है, किसी में कुछ बेहतर मिलता है, दूसरे में कोई टॉपिक बेहतर मिलता है, तो इस तरह से इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। तो इस चुनौती का सामना आप सबको करना चाहिए और तैयारी करने की शुरुआत में ही करना चाहिए क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तैयारी कैसे करेंगे, जब तक सड़क नहीं बनेगी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किससे जाएंगे, राइट? लेकिन केवल सिलेबस जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, सिलेबस आपके सामने है, मान लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट के 50 टॉपिक निकाल लिए कि ये 50 टॉपिक मेरे सिलेबस में हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो 50 टॉपिक हैं क्या ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो हमारे मूल अधिकार है समानता का सिद्धांत, क्या आप उन्हें उस समानता के सिद्धांत को इन सभी टॉपिक्स पर अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे? यानी कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं मुझे समान रूप से इनकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, पता नहीं कितने डेप्थ में जा करके पूछ लिया जाए, तो बेहतर है कि मैं इन सबको समान रूप से तैयार करता हूं। चलिए उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन व्यावहारिकता ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जितना सिलेबस है पूरा का पूरा, मैं सिविल सर्विस के सिलेबस की बात कर रहा हूं, उसे अगर आप सोचेंगे कि समान रूप से तैयारी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यह सही रणनीति होगी। देखिए यहां सीधी सी बात यह है कि आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी कितना पढ़ें करके, यानी कि यह जो पूरा पूरा मेरा सिलेबस है इस सिलेबस में मुझे कितना पढ़ना है, किस किस को कितना पढ़ना है, ये बहुत स्पष्ट नीति आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया है रणनीति। रणनीति का मतलब क्या होता है कि जब आर्मी का कमांडर जब अपनी योजना बना रहा होता है कि शत्रु पर कैसे अटैक किया जाएगा, कैसे हम बचाव करेंगे अपना, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी जगह समान रूप से अपनी सेना को डिप्लॉय कर देता है। नहीं, कहाँ उसे ज़्यादा सेना की ज़रूरत है, कहाँ किस तरह के सैनिकों की ज़रूरत है, कहाँ उसे बिल्कुल खाली छोड़ देना है, इस तरह से वो रणनीति बनाता है। इसीलिए मैंने यहाँ रणनीति शब्द का प्रयोग किया कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किसे कितना पढ़ना है, किसे कितना छोड़ना है। और बेहतर होगा कि मैं इसे इस रूप में कहूँ कि उसकी आपके लिए चार श्रेणियाँ होनी चाहिए। जो आप पढ़ेंगे टॉपिक्स को, उसकी चार श्रेणियाँ बना लीजिए। लेकिन ये चार श्रेणी कब, इससे पहले आपको एक काम करना होगा, इसे ध्यान से सुन लीजिए। जो भी आपने सिलेबस तैयार किया है, याद रखिए कि इस पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ जाना है और बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ना है। उपन्यास के रूप में नहीं पढ़ना है कि बस यार निपटाना है, नहीं। अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में निपटाने की थ्योरी लेकर के चलेंगे तो मान करके चलिए कि आप अपने सिलेबस को नहीं निपटा रहे हैं, सही मायने में आप खुद को ही निपटा रहे हैं। यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के चैलेंजेस हैं। एक बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ जाना है और इत्मीनान के साथ पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि आपको थोड़ा पता लग जाए कि अच्छा यह विषय क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में जाते हैं और उस कॉलोनी में आपको एक पर्टिकुलर घर में जाना है, अपने दोस्त के यहाँ जाना है। ठीक है, आपके पास एड्रेस है, आप सीधे अपने दोस्त के घर जा सकते हैं। लेकिन यहां आपको इस तरीके से कॉलोनी में एंटर करना है कि आप देखिए चारों तरफ के, अच्छा ये कॉलोनी कैसी है, किस तरह के मकान बने हुए हैं, कहां कहां किस तरह की चीजें हैं, कहां पार्क है। यानी कि आपके दिमाग में उस कॉलोनी का पूरा चित्र तैयार हो जाए। हाँ, उसमें फिर आप अपने दोस्त के घर स्पेसिफिकली जाइए और ज्यादा अच्छे तरीके से मुआयना कर लीजिए। तो एक बार आपको पूरे विषय की जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आप इसे फिल्म के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, 2 घंटे की फिल्म है। उस 2 घंटे की फिल्म में से बीच बीच में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अगर आप हटा दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कहानी में, तो आप हटा करके देख सकते हैं। आजकल तो सुविधा है OTT पर कि आप बकायदे फॉरवर्ड करके जल्दी से फिल्म को देख लीजिए। लेकिन मान करके चलिए कि आप फिल्म के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और सच बात यह कि आप खुद के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं मालूम कि इसमें से किस हिस्से को आपने नहीं देखा है और उसका इम्पैक्ट उस पर आगे चल करके क्या होगा। अभी मैं जावेद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं किस में था उनका इंटरव्यू, 2-4 दिन पहले की बात है। तो जावेद साहब से इंटरव्यू लेने वाले ने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया। हर घर कुछ कहता है प्रोग्राम में जावेद साहब के साथ इंटरव्यू चल रहा था उनका। तो उन्होंने कहा कि जावेद साहब, आपने इतनी लंबी जिंदगी अभी तक पूरी की, इतना सफर तय किया है और इतनी अच्छा शानदार सफलता हासिल की है, तो जब आप अपनी जिंदगी को पीछे की ओर देखते हैं तो आप उसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसे आप काट कर निकालना चाहेंगे, कहेंगे कि नहीं ये हिस्सा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। जावेद साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को काटना नहीं चाहूंगा। जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। जैसे मान लीजिए कि मैं फिल्म के 29th नंबर, हो सकता है कि उन्होंने कुछ दूसरा बोला हो, मान लीजिए कि मैं 29वें दृश्य को काट रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसे निकाल दूं, लेकिन आगे हो सकता है कि जो 62वां दृश्य है उस 62वें दृश्य का संबंध 29वें दृश्य से हो, और आगे की जो घटनाएं घटी हैं 30वीं, 31वीं, 32वीं, उन सब में कहीं ना कहीं 29वें दृश्य का रोल रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि देखिए, हमारी जो जिंदगी आती है ना, ये टुकड़ों में नहीं आती, ये एक पैकेज में आती है, और मेरी जिंदगी पूरी एक पैकेज में आई है, इसलिए मैं किसी भी हिस्से को काटना नहीं चाहूंगा। दोस्तों, वही बात मैं यहां आपसे आपके पढ़ने के बारे में कह रहा हूं। जो आपका सिलेबस है, वो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार आपको पढ़ जाना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। नहीं पढ़ेंगे तो होगा यह कि आपकी समझ कमजोर पड़ जाएगी। आगे चल करके आप जब कुछ पढ़ रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड जो हिस्सा था उसे छोड़ दिया है या उसके प्रति न्याय नहीं किया है, तो ये सब्जेक्ट आपके प्रति न्याय नहीं करेगा। तो दोस्तों, कितना कितना पढ़ें इसका जो पहला बिंदु है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वह है कि एक बार सब कुछ पढ़ें और बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ें। आज मुझे यहीं अपनी बात समाप्त करनी होगी। फिर मैंने जो चार श्रेणियों की बात कही है कि फिर आप पढ़ने के लिए कैसे अपनी चार तरह की श्रेणियां बनाएंगे, वो किस तरह की होंगी, दोस्तों इस पर हम लोग फिर आगे बातें करेंगे। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है सैकत बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल से हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।